काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन फल सरकार
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो
ओम शांति। आगे का सोफा आप सबके लिए खाली है, जो आगे आना चाहे आ सकते हैं। बहनों की तरफ फ्रंट सोफा खाली है। हम सभी बाबा के मीठे प्यारे सिकिलदे लाडले बच्चे हैं, यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ स्नेही हैं, सहयोगी हैं। तो सचमुच यज्ञ स्नेही सहयोगी रक्षक कौन बन सकता है, और उसका पवित्रता से क्या संबंध है, पवित्रता क्या है, इस विषय पर गहराई देने के लिए हमारे बीच राजू भाई हैं। और हम आप सबका यही सबकी तरफ से ये अभिनंदन करना चाहते हैं राजू भाई का, कि राजू भाई हमें और गहराई से बाबा के और करीब लाने में, क्योंकि यज्ञ वत्स वही है जो यज्ञ रक्षक भी है, तो और बाबा के करीब हम आ जाएं, स्नेही सहयोगी बन जाएं, उसके लिए दिशा प्रदान करेंगे आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। आप सभी बाबा के बहुत बहुत समीप रतन, यज्ञ के बहुत स्नेही और सहयोगी बच्चे हो। आज जो मुझे टॉपिक मिला है, उस टॉपिक के साथ साथ मैं चाहता हूं, अभी अभी जब लास्ट में मैं शांति सरोवर में टीचर्स बहनों की भट्टी करा रहा था, तो करीब 130 बहनें थी पूरे सिकंदराबाद और हैदराबाद की, और उनके बीच में जो एक घंटे की योग की तपस्या हुई वो वंडरफुल थी, यादगार थी, कोई भी साकारी वतन में नहीं था, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। बाबा ने शांति सरोवर का स्थान भी ऐसा ही बनाया है जैसे मिनी मधुबन, तो उस स्थान पर जब सभी ने तपस्या की तो इतने सुंदर वाइब्रेशन चारों तरफ से जैसे लाइट और माइट फैल रही है। तो आज इस भट्टी में आप सभी भी ऐसी तपस्या करना, अभी 5:30 से 7:30 तक मैं आपके बीच में हूं, प्रश्नों के उत्तर तो कल आपको मिलेंगे, जो भी मन में होंगे उन सब प्रश्नों का उत्तर कल क्लास में लेंगे। आज बाबा की इस यज्ञ की विशेषताएं, इसको यज्ञ क्यों कहा गया? विद्यालय, परिवार, उसके साथ साथ कई बार बाबा कहते हैं ये एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट्स आते हैं और उनको इलाज मिलता है। सुप्रीम सर्जन उनको ऑपरेशन करता है, दवाइयां देता है। लेकिन साथ साथ जब से यज्ञ की स्थापना हुई 1936-37 में, तो बाबा ने इसको नाम दिया अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजाई के लिए, स्वराज्य के लिए, इस देह अभिमान के अश्व को स्वाहा करना, वो अश्व नहीं, हिंसा की जरूरत नहीं, लेकिन देह अभिमान का अश्व उसमें स्वाहा हो ज्ञान के आधार से, योग की अग्नि के आधार से। यज्ञ माना जहां अग्नि हो, यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस अग्नि के अंदर आहुति देते रहते हैं, बीच बीच में स्वाहा स्वाहा मंत्र जपते जपते स्वाहा के साथ साथ कोई न कोई चीज की आहुति डालते हैं। उन्होंने तो यज्ञ में तिल, जौ, घी, कई वैरायटी चीजें डाल करके यज्ञ को सफल करते हैं और अंत में सब कुछ मिला करके एक साथ डाल के कहते हैं स्वाहा। तो बाबा ने भी इस विद्यालय को यज्ञ का नाम दिया और इस यज्ञ में हम सबको बाबा ने कहा कि इस यज्ञ के रक्षक ब्राह्मण हैं। जब से यज्ञ की स्थापना की, ब्रह्मामुख से ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों को एडाप्ट किया, जन्म दिया और इस यज्ञ की सेवा के लिए उनको निमित्त रखा। यज्ञ में ब्राह्मणों को ही बिठाते हैं और बड़ी शुद्धि के साथ मंत्र जाप करते हैं, कहीं भी बुद्धि उनकी इधर उधर न जाए, उनके द्वारा यज्ञ होते हैं। रचाने वाला, यज्ञ कराने वाला सेठ अलग होता है, ब्राह्मण अलग होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सेठ शिव बाबा जिसने ये यज्ञ रचाया है और हम सबको संभालने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त रखा है। और यज्ञ की संभाल, यज्ञ की स्थापना के साथ साथ कैसे इसकी वृद्धि हुई है, मेरे पास 40-42 साल का इतिहास तो प्रैक्टिकल आंखों से देखा है। उसके पहले तो आप सब जानते ही हो कि 14 वर्ष तक बाबा ने केवल योग तपस्या कराई और भिन्न भिन्न कई प्रकार के राज ज्ञान के, तीनों लोकों के, तीनों कालों के स्पष्ट किए साक्षात्कार के माध्यम से। इसलिए 14 साल तक तपस्या का पाठ चला और उसके बाद माउंट आबू में आने के बाद 2 साल परीक्षा का पाठ चला। तपस्या के बाद परीक्षाएं आई और इतनी कड़ी कड़ी परीक्षाएं बाबा ने ली जो कभी भी किसी ने सोचा नहीं था। इतने बड़े बड़े परिवार की आत्माएं बहुत प्यार से पली हुई, जो पिस्ता बादाम खाने वाले कहते थे वो मंडली माना पिस्ता बादाम खाते हैं, बहुत आराम से रहे, सुख से चैन से रहे, कुछ दुनिया का पता नहीं। और यहाँ माउंट आबू में आते ही कई प्रकार की परीक्षाएं, पहली परीक्षा क्या आई कि यहाँ पर बहुत बरसात और ठंडी होती थी, ये सब कराची और समुद्र के किनारे रहने वाले जब यहाँ आए तो गर्मी से आए थे, कपड़े भी गर्म नहीं थे और दवाइयाँ तो थी ही नहीं, तो इसलिए अधिक से अधिक लोग आते ही बीमार पड़ने लगे। कोई को सर्दी हुई, कोई को बुखार हुआ, कोई को कोई प्रकार की बीमारियां हुई ठंडी में। और उसके बाद धीरे धीरे जो वहां से लेके भर के स्टीमर आए थे वो खा पी करके पूरा कर दिया और कोई यहाँ पर जो संबंध संपर्क वालों ने निमंत्रण दिया था उन्होंने भी देखना चाहा कि यह संस्था कैसे चलती है, इसलिए कोई प्रकार का सहयोग नहीं दिया। उनका था लक्ष्य यही था कि ये जब यहाँ आएंगे और हम लोग कुछ भी इनको नहीं सहयोग देंगे ये संस्था टूट जाएगी। इनको पता ही नहीं था इसके पीछे कौन है, कौन इस संस्था का संस्थापक है, कौन इसका यज्ञ पिता है, कौन इसके यज्ञ माता है। तो बेचारों ने पेपर तो लिया, उन्होंने सहयोग नहीं दिया, लेकिन बाबा ने इतने ज्ञान और योग के बाण भरे थे तो बच्चों को चैलेंज दे दी कि बच्चे तुम्हारे पास तो अविनाशी धन है, ज्ञान धन है, और इसका दान करो। कुछ लोग जो कच्चे थे, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं थे, सिर्फ बाबा को देख करके आए थे, शिव बाबा में जिनका निश्चय नहीं था, वो तो हिल गए और जा करके लौकिक में मैं जाऊं कमा के ले आऊं कुछ, मैं बाबा को कुछ मदद करूं। बाबा कहता था बच्चे मदद नहीं, ये तो माया तुम्हारे को खींच रही है, ऐसा पैसा बाबा को नहीं चाहिए, तुमने समर्पित किया है बाबा अपने आप खिलाएगा। और बाबा की वो बात कि एक दिन भी एक भी बच्चा भूखा नहीं सोया, भले कुछ भी नहीं भंडारी के अंदर था, चारा ना भी नहीं है, 400 लोग खाने वाले, और बाबा बड़ा मस्त बेफिक्र बात था, क्योंकि उसको पक्का था कि ये यज्ञ बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, शिव बाबा के, वो इनको पालेगा खिलाएगा। तो सवेरे सवेरे क्या करते थे, सबको ले जाते थे पहाड़ों पर, चलो चेरी खाएंगे, करौंदे खाएंगे, यहाँ पर जो जंगल के फल थे शहर के बहाने बाबा उनको ले जाता था, और खूब 2-3 घंटे एक्सरसाइज भी हो जाती थी और पहाड़ों की सैर करके कुछ न कुछ ऊपर से खा करके आ जाते थे पहाड़ों से। और जब 10-11 बजे आते थे तो बाबा कहता अभी बच्चे थक गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो 1-2 घंटा रेस्ट करते थे, उसी के बीच में सब कुछ हो जाता था, अनाज भी आ जाता था, दूध भी आ जाता, सब चीजें आ जाती थी, क्योंकि 10-11 बजे के बीच में पोस्ट आती थी, और वो पोस्ट के अंदर कहीं न कहीं से गुप्त रीति से चेक या ड्राफ्ट आ जाता था। डेली का ही रूटीन हो गया था काफी समय तक, कि बाबा ने 1-2 बजे के अंदर बेल लगनी है, सबको पूरा भोजन मिलना है, खिलाया सबको, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है आज क्या बनेगा, क्या आएगा, कहां से आएगा, बाबा खिलाएगा। एक दिन बाबा ने मुरली चलाई, शायद सुना हो कि बाबा ने होली के त्योहार पर शाम को कहा कि बच्चे सवेरे सवेरे बच्चों को आज जलेबी खिलाएंगे। अभी हलचल हो गई यज्ञ में, भंडारी कहने लगी बाबा ने जलेबी खिलाने की बात कही है, और हमारे पास तो यहाँ भंडारे के अंदर न तेल है, न घी है, न चीनी है, न मैदा है, कुछ भी नहीं है, जलेबी कहाँ से बन जाएगी। तो दौड़ करके जब बाबा की मुरली पूरी हुई गई बाबा के पास, बाबा आपने ऐसा कैसे कह दिया कल सवेरे जलेबी बनेगी, कहाँ से बनेगी। तो बाबा ने कहा मैंने थोड़ी कहा है, उसने कहा है वो खिलाएगा। अच्छा चलो बच्चे तुमको संकल्प उठा है ना, तो ये काम करो 2 बजे उठ करके सभी योग करना। अब 2 बजे योग करो, उससे जलेबी का क्या कनेक्शन है, 2 बजे योग का जलेबी से क्या कनेक्शन बताओ। होली का त्योहार था, बाबा ने सबको तपस्या में बिठा दिया, और जब 2 बजे लाइट जली, लाल लाइट होती है ना योग में, तो एक बहुत विरोधी सिंधी परिवार था, माता बड़ी ज्ञान में बहुत भावना वाली थी, उसके अंदर था मैं बाबा के यज्ञ में कुछ देता रहूं देती रहूं, लेकिन पति बड़ा एंटी था, और वो सामने ही जो ब्रज कोठी है ना उसके सामने ही उसका बंगलो था। तो जब 2 बजे वहां लाइट चली, योग शुरू हुआ, गीत बजा, तो उसकी नींद फिट गई, और जब नींद फिटी तो अपने युगल को जगाता है कि आज पता नहीं बाबा को त्योहार के ऊपर हुआ क्या है, सब होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसने योग शुरू किया, लाल लाइट जला दिया, कुछ शायद बाबा को जरूरत पड़ी होगी, अब मुझे कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो तुम यहां रखा है ना भंडारी अलमारी के अंदर, जितना पैसा रखा है तुम अभी दे आ जा करके, बाबा कुछ कह रहा है मुझे। बोली सवेरे दे दूंगी ना, अभी क्या जल्दी रात को 2 बजे जा रहे जाने की। बोला सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, तुम अभी जा। अब उसको इतनी टचिंग आ रही थी उधर योग चल रहा था, इसको टचिंग आ रही थी और उसके बाद उसने अपने युगल को उठाया और पैसा दिया और दे करके वो उसी समय वहां पहुंचे जाकर के और जाके सामने दादी जानकी को बुलाया और कहा कि हमारे पति को पता नहीं नींद नहीं आ रही है और वो कहता है जाओ होली है दे आओ जाके बाबा को, कभी कभी कुछ नहीं दिया, आज उसको पता नहीं क्या हो रहा है। तो दादियों को तो पता था ये बाबा की जादूगरी है, तो दादियों ने वो लिया और खूब उसके साथ डांस किया, क्योंकि वो तो बड़ी भावना वाली माता थी, वो तो समझती थी। फिर सवेरे सब चीजें आई और भोग लगा, सबने जलेबी खाई। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बच्चों की पालना की, बहुत परीक्षाएं भी ली, निश्चय की विजय होती ही है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों की बहुत सारी कहानियां हैं जो दादियां बीच बीच में सुनाती रहती हैं। लेकिन उसके बाद सेवाएं जब शुरू हुई 52 में, तो बहनें जब बाहर निकली तो बाहर जाने के बाद पहले पहले गंगा के किनारे, जमुना के किनारे संगम पर चित्र लेकर के बैठती थी, तो वहां पर लोग अच्छे अच्छे देखते थे। तो कोई बहुत अच्छी मतलब कुमारियां जो बहुत फरिश्ते की जैसे दिखाई दे रही, इनको कुछ दुनिया का ज्ञान है, इनोसेंट, और ये क्या यहाँ कर रही है सागर के किनारे पानी किनारे बैठ करके, तो उनसे पूछते थे, बात करते थे, आकर के ज्ञान सुनते थे। फिर कहते थे बहनों इतना ऊंचा ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो हमारी कोठी में वहां रहो, चल के वहीं आपको हम सब प्रबंध देंगे। तो ये तो बहुत निश्चिंत थी, बाबा इनके साथ था। तो इन्होंने वहां से उनके घरों में शुरू किया केंद्र, और जिनको भी दृष्टि देती थी उनको वैकुंठ के साक्षात्कार हो जाते, सत्युग के साक्षात्कार हो जाते। एक बार हंसी में मनोहर दादी कहानी सुनाती है कि मैं बहुत थकी हुई थी और एक भाई आया, कहता है मेरे को मनोहर दादी से ही दृष्टि लेनी है। तो ये कहती मेरे को तो नींद आ रही थी, अब वो कहता मुझे इन्हीं से दृष्टि लेनी है। तो मैं जबरदस्ती जाके बैठ गई, तो मैं तो ऐसे नींद में थी और जब ऐसे मैं करती थी तो उसको सत्युग के साक्षात्कार होते थे। उसकी तो भावना बहुत अच्छी थी, कहती मैं नींद कर रही हूँ और उसको सत्युग के साक्षात्कार बाबा करा रहा है, और इतना खुश हो गया आधा घंटा योग के बाद, कहता हमको जो पाना था हमने पा लिया बस। ऐसे ऐसे केंद्र खोले बाबा ने, माना किसी भी आत्मा के द्वारा बाबा कुछ भी करा सकता है। तो वो जब सेवाएं शुरू हुई तो दादियों को जो कुछ मिलता था, खुद नहीं खाया उन्होंने, बहुत त्याग वृत्ति से जो कुछ लोग दे जाते थे, एक बार कोई 8-10 डिब्बी घी दे गया, तो उन्होंने सोचा ये घी हम इतना क्या करेंगे, सब बाबा के यज्ञ में भेज दूं। लेकिन अगर बाबा को स्वीकार न करना हो तो क्या होगा, क्योंकि किसी का इतना पैसा लेकर के, एक बाबा कहता है साहूकार अगर कोई पैसा दे तो मैं उसे साहूकार बनाने के लिए बंध जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है इसके लेने की। लेकिन बहनों ने सोचा ये 10 घी मिल रहा है, मैं बाबा के घर में भेज दूं, और उन्होंने भेजा यहां पर। और जब आ गया तो उसको 2-3 दिन के बाद चोर चोरी करके लेके चले, उसका सफल ही नहीं किया। ये मैं क्यों सुना रहा हूं कि जिसका सफल करना है उसका ही होता है, सबका सफल भी नहीं होता है। कोई किसी भावना से भेजता है, किसी भावना से देता है, लेकिन बहनों के अंदर इतना था कि कोई भी चीज खाने की पीने की कुछ भी मिलता था वो सब यज्ञ में भेज देते, कुछ अपने पास नहीं रखते थे। एक बहन बड़ी भावना वाली थी, हमारे सामने ही थोड़े समय पहले, काफी समय हुआ है, मधुबन में ही रहती थी दादी। तो उसने शरीर छोड़ा और बहुत भोली, बहुत सच्ची बाबा थी। बाबा मुरली सुनाता था, ऐसे बैठ करके ऐसे सुनती रहती थी, कोई ज्ञान योग किसी को सुनाती नहीं थी, भावना बहुत थी। तो उसको बाबा ने एक सेंटर पर भेज दिया, तो वो सेंटर पर रहती थी, तो उसको कोई इतना बड़ा तरबूज दे गया। अब वो तरबूज कैसे खाऊं मैं, इतना बड़ा मैं क्या करूंगी, मैं बाबा के पास भेज दूं। अब उसको भेजने का तरीका तो पता नहीं था, तो उन्हें तरबूज के ऊपर चाकू से ओम शांति माउंट आबू राजस्थान लिख दिया बस, और लिख करके एक भाई को बोला तुम ट्रेन में रख के आओ, आबू में जाने की वाली ट्रेन में रख के आओ। वैसे ही रख के आ गया तरबूजा, और उसमें ओम शांति माउंट आबू राजस्थान लिखा था, और लुढ़कते 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 आबू आ गया बाबा के पास। जब बाबा के पास पहुंचा तो किसने भेजा है पता ही नहीं, प्राम कहां से आया कुछ पता नहीं, बाबा कहता उसी बच्चे ने भेजा होगा। सच्ची दिल थी, बहुत भावना वाली थी, तो बाबा के पास वो आ गया, पहुंच गया। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, उसका सफल कर लिया बाबा ने, समझ गया कि उस बच्ची ने ही भेजा है। तो बाबा का यज्ञ शुरू शुरू में ऐसे ऐसे प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई 52-53 के बाद की बात है ये। हम लोग आए 67 में, 67 माना हमारी उम्र केवल 4 साल थी उस समय, लेकिन मम्मा बाबा दादियों को इतना शौक था कि हम गांव गांव में जाके सेवा करें। तो 60 में एक बहुत छोटा गांव यूपी का, अभी भी वहां लाइट नहीं है, ऐसे समय में भी इतनी प्रगति के बाद भी लाइट नहीं हमारे गांव में, तो मम्मा को हमारे पिताजी ने निमंत्रण दिया। कानपुर में आई थी कि मम्मा को कहा कि मम्मा बहुत नजदीक हमारा 2-1.5 घंटे पर गांव है, आप चलेंगी? तो उनको तो बड़ा शौक था, तो कहा हाँ जरूर चलेंगे। तो मम्मा ने 35 दादियों की एक पूरी बस की, 35 दादियां थी, सब दादियां जो बड़ी बड़ी उधर सेवा पर निकली थी, उन सबको लेकर के हमारे गांव की तरफ पहुंची। गांव भी रोड से 2 किलोमीटर पैदल का रास्ता, तो रास्ते में ही उतार दिया बस ने, तो वहां एक कोठी पर मम्मा को रखा सब दादियों को, और फिर बैलगाड़ी से मम्मा को सैर कराया, गांव की बैलगाड़ी पर सैर किया, और हमारे गांव में पिताजी को गीता पाठशाला खोल करके दी। 60 की बात है, माना उस समय भी कोई इतने साधन सुविधाएं 60 तक भी नहीं थे, सब दादियां एकदम थर्ड क्लास में ही सैर जाती थी, आते थे ट्रेन के डिब्बों में, और एक अकेले अकेले, आज गुलजार दादी से हम बैठे थे, रूहरियान कर रहे थे, कहती हम तो कितनी बार अकेले गए आए हैं, वहां बिठा देते थे यहाँ उतार लेते थे, हमको क्या करना है, कोई साथी नहीं, कोई साथ में नहीं। तो इन दादियों ने बहुत त्याग तपस्या से यज्ञ को सींचा है, एक एक पैसे को सफल किया है, और उससे हमने देखा यज्ञ धीरे 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 आज वृद्धि होते, बीज से आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया है, जो सब प्रकार के सुख साधन सुविधाएं बाबा ने जैसे सब बच्चों के लिए उपलब्ध करा दी। लेकिन वो बीज जब था, जब मैं 71 में पहली बार आया हूं, सब स्थूल था, माना कोई साइंस के साधन यहां नहीं थे, और केवल ये छोटा हाल था, हिस्ट्री हाल, इंद्रप्रस्थ बन के तैयार हुआ था, और भंडारा वगैरह नहीं था, मेडिटेशन हॉल नहीं था, पुरानी बिल्डिंग थी और थोड़ा सा बना हुआ स्थान था, हवाई महल बन गया, बाबा ने बनवा दिया था, उधर ऊपर एरोप्लेन बनवा दिया, देखा एरोप्लेन, बाबा ने उसको एरोप्लेन नाम क्यों दिया, हवाई महल देखा है, नाम सुना होगा, ये पांडव भवन में जो बाबा के कमरे के सामने इधर बिल्डिंग है, उस मेडिटेशन हॉल के साथ में, उसका नाम है हवाई महल, क्योंकि उसमें जब बना तो हवा बहुत अच्छी क्रॉस होती थी इधर से उधर, बहुत खुला था ना, कहीं बिल्डिंग और तो थी ही नहीं, वही एक बिल्डिंग बाबा ने बनाई, उसका नाम दिया हवाई महल, और दूसरी बिल्डिंग बनाई जो सबसे ऊंची है, जहां झंडा लहरा रहा पीछे साइड में, एरोप्लेन, क्योंकि वो एरोप्लेन की साइज का बनाया, उसमें मरगोल 2 बनवा दिए और 2 मरगोल के बीच में एक झंडा लगाया, वहां रहने की व्यवस्था की कि एकांत में बच्चे यहां बैठ करके तपस्या करेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे उड़ेंगे। तो वो एरोप्लेन और हवाई महल 2 बिल्डिंग बाबा के सामने साकार में बनी थी, और ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, ऊपर का से पोर्शन बना था, नीचे का बन गया था। बाबा अव्यक्त हो गए, दादी को हाथ दे करके सब दिखा के सिखा के बाबा अव्यक्त हुए, और उसके बाद जो दादियों ने बाबा की एक एक बात को प्रैक्टिकल स्वरूप दिया, उसका इतिहास बड़ा वंडरफुल है। जितना कुछ बाबा ने कहा था ये होगा ये होगा ये होगा, तो दादियां उसके आधार से अव्यक्त बाबा का साथ लेते हुए, क्योंकि बिना पूछे तो बाबा दादियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन दीदी और दादी की जोड़ी ने, दीदी मनमोहिनी, सुना है नाम ना, किसने किसने देखा है दीदी को, दीदी को देखने वाले हाथ उठाओ, बस दीदी मनमोहिनी को कोई ने नहीं देखा, लीला बहन भी नहीं देखा, अच्छा एक कोई हाथ उठा रहा है नहीं, अच्छा हमने दीदी की 11 साल पालना ली, दीदी जब मम्मा अव्यक्त हुई 65 में, वैसे दीदी दिल्ली में सेवाएं करते थे, लेकिन प्रशासन में नंबर 1 थी, पढ़ी लौकिक पढ़ाई नहीं किया था कुछ भी, हैंडलिंग बड़ी जबरदस्त, तो बाबा ने दीदी को दिल्ली से अपने पास बुलाया कि तुम अभी मम्मा की जगह पर रहो, और मम्मा के कमरे में ही दीदी को रखा, वो जो कमरा है ना ये मेन गेट पर जहां पर बैठते हैं हम लोग कुर्सी डाल करके, सामने सामने वो दीदी का कमरा, अभी ऑफिस बना हुआ है। तो उस दीदी के कमरे में, मम्मा के कमरे में दीदी रहती थी और पूरा ही सब यज्ञ की इंटरनल कारोबार जो थी वो दीदी संभालती थी बाबा के साथ साथ। लेकिन जब बाबा व्यक्त हुए तो दीदी के पास बहुत प्यार था, वो गोपी थी, उसका नाम ही लौकिक में गोपी था, वो गोपिका थी बस, मतलब बाबा के प्यार में एकदम बस, मेरा तो बाबा और कोई नहीं साकार। तो बाबा समझते थे अगर बाबा ये शरीर छोड़ेगा ना तो ये बचेगी शायद नहीं, क्योंकि बहुत बहुत प्यार था। तो दीदी को बाबा ने सेवा पर भेज दिया बाहर, और दादी शक्ति स्वरूपा थी, थोड़ी पावरफुल। तो दादी को तीन चार दिन पहले ग्रुप लेके आई थी शरीर छोड़ने के पहले, तो दादी को बाबा ने कहा बच्ची पार्टी को भेज दो, तुम यहीं रह जाओ। तो दादी ने सोचा कभी तो बाबा मुझे कहता नहीं है, अभी बाबा ने कहा है तो मैं रह जाती हूं। तो दादी को बाबा ने तीन चार दिन में पूरे यज्ञ की ट्रेनिंग दी, उंगली पकड़ करके कैसे मकान बन रहे हैं, कौन कौन मुख्य कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कौन बाबा के अनन्य हैं, भंडारा कैसे चलता है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, अनाज कहाँ रखा है। तो दादी समझ नहीं पाई ये सब बाबा क्यों मुझे बता रहा है, क्योंकि मेरे को तो, दादी को तो था कि मेरे को तो सेंटर संभालना है, और ज्ञान योग में थोड़ी नंबर वन थी, भाषण कहने में भी तेज थी, मम्मा के सेकेंड थी दादी, इसलिए उसका नाम भी बाबा ने मुन्नी मम्मा रखा था। तो दादी तो समझ नहीं पा रही थी बाबा मुझे इतनी ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। लेकिन बाबा 18 जनवरी को जब थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसी हुई, सवेरे सवेरे मुरली नहीं चलाई, तो दादी को आया बहुत ठंडी है, बाबा को कहा बाबा आज आप मुरली नहीं चलाने, आप रेस्ट करो। तो बाबा कहता ऐसे कैसे है, बाबा सवेरे क्लास में नहीं आया, फिर शाम को कहता है कि बच्चों की आज मुरली नहीं हुई ना, आज मुरली सुनानी है, आप जल्दी क्लास करो। वैसे 9 बजे क्लास होता था तो बाबा ने 8:30 बजे बुला लिया सबको, और 8:30 से 9 बजे तक बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई लास्ट, और लास्ट में गेट पर खड़े होकर के छोटे हाल में कहा बच्चे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहना, अच्छा बच्चों से विदाई, छुट्टी। कभी बाबा ने ये शब्द यूज नहीं किए हैं, उस दिन लास्ट में ऐसे विदाई करके ऐसे टाटा करके, और दादी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके सीधा कमरे में दादी लेके गई, और बाबा चारपाई पर जाके बैठा। तो दादी को आया कि बाबा को मैं लिटा दूं, हाथ तो पकड़ा हुआ था, लेकिन लेटने के पहले बाबा ने दादी का हाथ जोर से ऐसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद दृष्टि ऐसे देते 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 हाथ ठंडा हो गया, माना हाथ ढीला हो गया। तो दादी को लगा शायद बाबा को कुछ हो रहा है, तो दादी ने बहुत प्यार से बाबा को दृष्टि लेने के बाद लिटा दिया, और लिटाने के बाद बाहर निकल के एक भाई को बुलाया तुम जल्दी जाओ डॉक्टर को बुला लो, क्योंकि यहाँ डॉक्टर कोई था ही नहीं, जो होमली डॉक्टर फैमिली डॉक्टर था वो बाजार में था। तो उसको साइकिल पर भाई लोग गए बुलाने के लिए, गाड़ियां तो थी ही नहीं उस समय, तो साइकिल से गए, और जब तक वापस आया आकर के बाबा देखा बाबा को, बोला तो बाबा तो है ही नहीं दादी, तो चला गया शरीर छोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे होगा, आप ट्रायल करो, ऐसे बाबा तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन देखा तो है ही नहीं तो क्या करेगा वो। तो उसने फिर दादी को बताया, और दादी फिर उस समय बहुत शक्ति तो बाबा ने दे दी थी हाथ में हाथ दे करके, रात भर फोन किए और फोन करके सबको बताया बाबा यही है, लेकिन आप लोग आ जाओ, बाबा इस देह से अलग हो गया है। ऐसे मतलब फोन करके बहुत शक्ति स्वरूपा बन के पूरी रात सबको फोन करके लाइटनिंग कॉल करके बुलाया। 2 दिन में 3 दिन में आते गए लोग, आते गए। बहुत ठंडी थी जनवरी महीने में, लेकिन सब आ गए। तब 21 तारीख को संस्कार हुआ, और जब बाबा के पास कोई संदेशी भेजे तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे, खाली खाली, क्या हो गया पता ही नहीं चलता। एक बार दादी गई गुलजार दादी को दिखा, ऊपर लिखा हुआ स्क्रीन पर ड्रामा ड्रामा, तो ड्रामा समझ करके फिर संस्कार किया गया। फिर उसके बाद बाबा की प्रवेशता, उसके बाद तो यज्ञ की विधिवत जैसे शुरुआत, जैसे बाबा को डायरेक्शन देना था, दीदी और दादी को निमित्त बनाया, और दोनों दीदी दादी ने बाबा के हर डायरेक्शन को फुल फॉलो किया, फिर यज्ञ की वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? जो बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम्हारे विदेश में केंद्र खुलेंगे तो पहले 7-8 का ग्रुप, 6 भाई बहनों का ग्रुप तैयार किया और 71 में तैयार होकर के इनको लंदन भेजा। और लंदन में रजनी बहन, जो जयंती बहन की लौकिक माता जी हैं, वो वहीं रहती थी और उन्होंने अपने घर में ही इसकी शुरुआत की। लंदन सेवाएं वहां शुरू हुई। फिर वहां से 1 साल एक ग्रुप वहां रहा करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह सैर किया और जहां जहां सेवाएं हो सकती थी वहां वहां पर स्थापना की, शुरुआत की। 72 में विधिवत लंदन का केंद्र खुला और उसके बाद सेवाओं का विस्तार होता गया। 72 में मैं भी मधुबन में परमानेंट रहने लगा और फिर मैंने देखा कि हर साल एक विदेशी, कहीं न कहीं से विदेशी आना शुरू हुए। यहां पर भी बाबा ने एक नियम बना दिया कि हर वर्ष एक बिल्डिंग नई बनती थी, लेकिन यहाँ कोई मजदूर नहीं थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था और इतने कंस्ट्रक्शन करने वाले कोई इंजीनियर, कोई बड़े बड़े, कोई पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे, सब काम हाथों से। और जब समर्पित भाई बहने थे, 50-60 हम सब थे यहाँ, वही सब कुछ बनाते थे। लास्ट दीदी का अव्यक्त होना और पूरे यज्ञ का परिवर्तन होना, यज्ञ में सब कुछ 83 में आना शुरू हो गया। हम लोग जो हाथ से धोबी घाट करते थे, चूल्हे पर रोटियां बनाते थे, बॉयलर पर पानी गर्म करके सबके कमरों में पहुंचाते थे, वो सब साइंस के साधनों से चेंज हुआ। 83 में दीदी अव्यक्त हुई, जुलाई में, 28 जुलाई को शरीर छोड़ा और फरवरी में ही हाल बन के तैयार हुआ ओम शांति भवन। सब वरदान लेकर के ओम शांति भवन आ गया। फिर तो वृद्धि होती गई, विदेशी बच्चे आए, देश के आए, लेकिन बाबा का एक सिद्धांत आज तक भी कायम है, बच्चे मांगने से मरना भला। कुछ भी हुआ, किसी बच्चे को ये नहीं कहा किसी के आगे हाथ फैलाना, डोनेशन लेना, चंदा लेना, ऐसा करना नहीं, अलाउ नहीं किया। जिनको भाग्य बनाना होगा वो अपना बनाएंगे और वही बनाएंगे जिनको भगवान को उनको रिटर्न करना है, उनका ही वो सफल होगा। तो बाबा ने जो सिद्धांत बना करके दिया उसके आधार से यज्ञ धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होने के। बाबा कहते थे बच्चे 108 सेवा केंद्र खुलेंगे। जब बाबा 69 में अव्यक्त हुए उस समय तक केवल 108 ही थे और उसके बाद जो वृद्धि हुई वो हम आप सब आंखों से देख रहे हैं। दादियों ने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, उनके त्याग और तपस्या का ये फल है जो आज सारा विश्व, इतना विस्तार हुआ है विश्व के अंदर, जो आज 9-10 लाख परिवार इससे जुड़ गए और 8,000 से सेवा केंद्र अधिक बन गए, इतना बड़ा विस्तार हो गया। लेकिन यज्ञ को चलाने का, यज्ञ रक्षक किसको बाबा कहता है, अब उसके ऊपर मैं आता हूं। क्योंकि बाबा ने तो यज्ञ की रचना की, यज्ञ की स्थापना की, लेकिन इस यज्ञ की रक्षक आत्माएं वही बन सकी जो एक बाबा दूसरा न कोई, जिनकी लगन की अग्नि प्रज्वलित है। यज्ञ माना अग्नि और वो अग्नि है लगन की अग्नि। जिन आत्माओं के अंदर बाबा के प्रति अटूट प्यार, लगन माना प्यार, उस प्यार के आधार से उन्होंने तन मन धन समय सब कुछ समर्पित कर दिया। कुछ नहीं देखा क्या होगा कल, उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान इस सृष्टि पर आ गया, मेरा जितना सफल हो जाए मैं करूं। मन निश्चय हुआ, लोग बलिहार हो गए, परिवार के परिवार, मेरे लौकिक परिवार वालों ने तो इतना पक्का था क्योंकि उस समय डिक्लेयर हो गया था 76 में विनाश हो जाएगा। अब 76 में विनाश हो जाएगा तो मेरे कहने के तुम पढ़ के क्या करेगा, जबकि मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा था। मेरे पिताजी 3 भाई और तीनों भाइयों में मैं अकेला बेटा, एक बहन एक भाई। बहन 7 साल की थी, उसको पिताजी ने कहा तुम सेंटर पर चली जाओ बहनों के साथ, वो सेंटर पर रहने लगी। और मैं 15 साल का हुआ तो बहन मधुबन में उस समय थी, वो मुझे मिलने आई घर पर, तो मुझे कहती छुट्टियों में तुम क्या करोगे, चलो तुमको मधुबन घुमा के लाते। क्योंकि पिताजी ने कोई लौकिक संबंध नहीं रखे थे, मामा चाचा काका या मासी क्या होती मुझे कुछ पता नहीं, कहाँ किसका घर है कुछ मालूम नहीं। बाबा मिल गया माना एक बाबा दूसरा न कोई, कोई संबंध नहीं किसी से। लोग कहते थे तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, शादी करनी पड़ेगी, ये कहना पड़ेगा, फिर आप सबके आगे झुकोगे। तो वो कहते थे मेरे बाबा को मैंने दे दिया जीवन, मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूं, और अगर विनाश नहीं होगा तो हम सब कुछ समर्पित कर देंगे, कुछ नहीं रखेंगे। तो जब मैंने मधुबन में आया और मधुबन का मुझे जादू जैसे लगा, मधुबन बाबा के घर में ऐसा लगा कि ऐसा संसार तो कहीं नहीं है, तो दीदी और दादी ने मुझे परख भी लिया और कहा तुम रहना चाहोगे? दादी आप छुट्टी देंगे जरूर रहेंगे। तो बोली तुम तो अभी बहुत छोटे हो, 15-16 साल की उम्र है, और तुम्हारे पिताजी तुमको छुट्टी देंगे? हमने कहा वो छुट्टी लेना मेरा काम है, आप छुट्टी दो। जब मैं गया लौकिक में वापस 71 में, तो पिताजी को सुनाया कि मेरा दिल है मैं वहां रहूं, और दादी दीदी ने शर्त ये रखी है कि अगर आप छुट्टी देंगे चिट्ठी देंगे तो रखेंगे। बोला अरे मैं यही तो चाहता था, तुम भले जाओ, तुम जाओगे समर्पित हो जाओगे तो हम लोग भी समर्पित हो जाएंगे पीछे पीछे, क्यों और कोई तो ही नहीं। तो मुझे चिट्ठी दी, एक साल मैंने पढ़ाई किया और 72 में मैं आ गया। तो उसके बाद 76 में विनाश तो हुआ नहीं, चैलेंज तो ये थी। तो पिताजी का जो चैलेंज था ड्रामा ने ऐसा ही किया, 77-78 में माँ ने शरीर छोड़ दिया। अब माँ शरीर छोड़ेगी तो घर में कौन रहेगा, खाना बनाने वाला कौन, बुजुर्ग को संभालने वाला कौन? बहुत बड़ी बात आ जाती है ना कि माताएं जो घर संभाल रही हैं वही नहीं है तो कौन घर संभालेगा। तो मुझे जब दादी यहाँ से विदाई देने लगी छुट्टी माँ के शरीर छोड़ने पर 5-6 दिन के बाद, तो मुझे टेलीग्राम मिली, क्योंकि उस समय फोन तो थे ही नहीं गाँव से। तो जब पता चला तो हमने कहा दादी जाना पड़ेगा, तो बोले हाँ जरूर जाओ, लेकिन अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा पेपर है और वो पेपर अगर तुम पार कर लिया तो समझो पास। तो जब मैं गया लौकिक में तो बड़ा बंधन था वहां, तो हिसाब किताब बहुत कड़े थे, कुछ तांत्रिक विद्याओं का भी प्रयोग हुआ था, क्योंकि मुझे छोड़ना कोई नहीं चाहता था। जो दादाजी थे ना वो बहुत तांत्रिक थे, पिताजी के बड़े भाई, और उन्होंने ही सब ये सब नाटक किया था कि कैसे भी करके इनको बुलाना ही है। तो माँ ने उसी में ही याद में शरीर छोड़ दिया। और जब मैं पहुंचा तो मेरे लिए विपुल बंधन था, लेकिन मुझे बाबा ने टच किया, मैं संदेशी को लेके गया साथ में अपने गांव में, कानपुर से एक संदेशी ली, हमने कहा तुम चलो। बोली क्यों? हमने तुम भोग लगाने चलो, माँ का भोग लगाना। तो जब भोग लगवाया पहले दिन ही बाबा ने डायरेक्शन दे दिया, बच्चों को तो कहो कि केवल 2 दिन की छुट्टी है यहाँ पर। मैं गया था 13-14 दिन की छुट्टी लेके। तो बाबा का डायरेक्शन वतन से आ रहा, संदेशी कहती है कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे को बोलो केवल 2 दिन यहाँ रहना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत रस्सियां मोटी मोटी तैयार हैं बांधने के लिए। रस्सी दिखाई बाबा ने, बड़े बड़े रस्से दिखाए, और बोला कि अगर ज्यादा दिन रहेगा तो उनका प्रभाव आ जाएगा, इसलिए इसको बोलो 2 दिन से ज्यादा नहीं रहे। तो मुझे डायरेक्शन मिला और मैंने फटाफट सबको भोजन खिलाया, मरने का जो भोजन खिलाते हैं ना ब्रह्मा भोजन, वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके संबंधियों को बुला करके सबको खिला दिया। और मैंने कहा हमारे को तो टेलीग्राम आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा, फटाफट वहां से निकल आया। उसके बाद पिताजी और चाचा जी को जो पक्के बाबा के बच्चे थे उनको भी धीरे धीरे बुला लिया मधुबन, वो भी सरेंडर हो गए। अभी कुलदीपक कौन बनेगा, बात तो यहां आती है ना, जितना बंधन कुमार कुमारियों के आगे आता है, परिवार के अंदर एक बेटा होता है तो यही माँ बाप की आस होती है, कुलदीपक चाहिए। तो हमने कहा अब कुलदीपक तुम्हारा बाबा ही है, कहता ना मैं बेटा बनता हूं। तो मैंने बहुत निश्चय से बाबा को कहा कि बाबा अभी कुलदीपक बन के आप घर में बैठो, घर नहीं बेचूंगा, बेच के क्या करेंगे, क्या गांव में मिलेगा, खेती भी नहीं बेचूंगा, ये तो देने वाली है, दाता है। तो खेती और घर नहीं बेचा, बाकी दुकानें बेच दी और सामान जो था बहुत सारे जेवर और कपड़े जो माता जी ने इकट्ठे करके रखे थे ढेर, वो सब बिचवा दिया, कुछ सेंटर पर दिला दिया, सब सफल करो, कुमार बन जाओ अभी। तो जब कुमार बन गए, बिल्कुल हल्के हो गए, तो धीरे धीरे उनको बुलाया, और गांव में जो गीता पाठशाला के कुमार थे, अनन्य बच्चे थे बाबा के, उनको फिर घर भी दिया और खेती भी दी, तुम संभालो। जाति वाले धर्म अपने को लौकिक संबंधी कोई भी नहीं है, अलौकिक परिवार के हाथ में चाबी दे करके सब कुछ उनके हाथ में दे करके अच्छी तरह संभाल रहे हैं, अभी तक भी संभाल रहे हैं। आज कितने साल हो गए, जो तैयार होता है खेती से सब मधुबन में आ जाता है। घर में भी जो कोई भी चला जाए बीच बीच में हम लोग चक्कर लगाते हैं, कोई बहनों को भेजते हैं, 10-15-20 भी चले जाएं तो आराम से वहां रह सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाएं सब है। एक बार आपकी हैदराबाद की शीला बहन को मैं अपने गांव में ले गया पिछले 2 साल पहले, उसको इतना मजा आया सब, क्या मेरे साथ पुलिस की 3 गाड़ियां थी, गवर्नमेंट की गाड़ियों में मैं गया, तो वो जब हॉर्न बजाया गाड़ी वालों ने तो सारे छोटे छोटे बच्चे एकदम गांव वाले सब इकट्ठे हो गए आकर के, और इतना झुंड इकट्ठा हो गया, कौन आ गया कौन आ गया। तो हमने कहा अभी शीला बहन तुमको अभी लेक्चर देना है इनके आगे, बच्चों को ज्ञान सुनाओ। उसने 1 घंटा तक खूब हिस्ट्री सुनाई, खूब कहानियां सुनाई बच्चों, खूब बहलाया। तो अभी तक भी गांव में जाते हैं तो खूब सेवाएं, उषा बहन को एक बार लेके गया, उषा बहन ने भी खूब गांव में लेक्चर किया। तो ऐसे गांव वालों की सेवा होती रहती है, मम्मा की जहां धरनी है जन्म, जहां पर पैर पड़े हैं उस धरनी में भी कोई विशेषताएं होंगी जहां से हमको चुना। तो ये तो अपना लौकिक इतिहास है, लेकिन यज्ञ कैसे वृद्धि हुआ वो हम देख रहे हैं। धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ते गए और उन्होंने बड़ा गुप्त, कहते एक हाथ से कर दूसरे हाथ को पता भी न चले, ऐसे गुप्त और सच्चे योगी बच्चे पहले योग के वाइब्रेशन यज्ञ की रक्षा करते हैं, क्योंकि असुर तो बहुत हैं विघ्न डालने वाले। कहते जब यज्ञ रचा गया तो यज्ञ में विघ्न डालने वाले अनेक थे, और यज्ञ में जब विघ्न पड़ने लगे तो सुरक्षा के लिए फिर राम लक्ष्मण की सहायता ली उन्होंने, किसी न किसी ऐसे की सहायता ली जो असुरों से यज्ञ को बचा सके। उन्होंने तो दिखाया कोई गोबर डाल रहा है कोई किचड़ा डाल रहा है, अब गोबर किचड़ा नहीं लेकिन व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, ग्लानी करना ग्लानी कराना, कोई भी अवज्ञाएं करना, श्रीमत का उल्लंघन करना, सबसे बड़ा विघ्न तो बच्चों का ही पड़ रहा है, बाहर वाले तो कम डालते हैं। एक कोई बाबा का बच्चा जो बहुत समय से पक्का ज्ञान योग में चल रहा है, जिसने बहुतों को संदेश दिया है पवित्र बनो योगी बनो, जिसने सबको कहा है भगवान आया है, वो अगर कोई कारण से विमुख हो जाए, कोई कारण से वो माया से हार खा ले, तो सबसे बड़ा विघ्न किसका पड़ता है? उसका पड़ता है, क्योंकि वो जिसके पास जाता है लोग कहते हैं पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों को कहता क्या था, अभी क्या कर रहा है, ये कहता था भगवान पढ़ाता, फिर उसे पूछते हैं तुम क्यों कहता था, तुम तो कहता था भगवान मिल गया मुझे, आज क्या हो गया, कहता हो तो सुनी सुनाई पर कहते थे ना, मुझे निश्चय नहीं था। अब ऐसी बातें जब कोई जाकर के बाहर फैलाता है तो यज्ञ में कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहता ना एक कोई बच्चा अगर ऐसा करता है तो हजारों माताएं बांध हो जाती, बंधन में आ जाती। यहां पर एक बार ऐसा ही कुछ हुआ शांति वन में, अचानक कोई ने बाहर की एक लड़की जो काम करने आती है ना माई, वो बहुत अच्छी थी, काम करने में बहुत होशियार थी और थोड़ा कोर्स भी कर लिया था, समीप आ गई थी, रहती बाजार की थी, लेकिन यहां पर माताएं परिवार कोई अच्छे आते हैं ना तो अच्छे परिवार कोई देखते हैं, ऐसी कोई काम करने वाली मिल गई तो उसको बहुत पैसा ऐसा दे करके उसको बहुत स्नेह से उसको पटा लिया और उसको लेकर के अपने घर चली गई, गांव में चली गई, सेंटर यहां किसी को बताया नहीं, मधुबन में शांतिवन में बड़ों से भी नहीं बताया। और उसको जब लेके चली गई तो क्या हुआ, छोटी सी भूल छोटी सी बात ही है, लेकिन वो जब गई तो उसके गांव वाले भड़क गए कि एक हमारी बहन को, नाम तो बदनाम ही है ब्रह्मा कुमारी इस बात में कि बहनों को भगाते हैं, कुमारियों पर जादू कर देते हैं, तो उसने जाके केस डाल दिया और अखबार में बात फैल गई कि ब्रह्मा कुमारियों में फलाने फलाने गांव की लड़की को भगा के ले गए, कहां ले गए हैं इन्होंने छिपा दिया कहीं, अब यहां किसी को पता नहीं, अखबारों में इतना बड़ा न्यूज बन गया। अब उससे इतना बड़ा विघ्न आया, अखबारों में सब फैल गया। अब उसको जब तक पता चले 5-7 दिन में इंक्वायरी की गई कहां से गई किसके पास सेवा करती थी, जब फुल इंक्वायरी हुई तो पता चला कि भाई फलाने परिवार के पास वो रह रही है, यहां पता ही नहीं है। फिर उसको पुलिस वालों को बोला गया कि आप उसके पास जाओ, यहां से फोन किया गया कि आप भाई उसको वापस करो, ऐसा कैसे लेके गया बिना बताए। अब उस परिवार ने सोचा ही नहीं था ये सब हो जाएगा। अब इतनी बड़ी डिससर्विस हुई, यज्ञ में इतना बड़ा विघ्न आया, जो आजू बाजू की हमारी बहुत सारी गीता पाठशालाएं हम लोगों ने खोली थी गांव गांव में, वो सब बंद हो गई। एक भूल से सैकड़ों आत्माओं का जीवदान बंद हो गया। कितना बड़ा पाप चढ़ा होगा उस परिवार के ऊपर। कोई भी इस प्रकार की अगर ईश्वरीय मर्यादा का नियम का उल्लंघन कोई करता है, करता छोटा सा भूल है, वो समझता नहीं भूल है, वो माता ने तो कभी सोचा हो उस परिवार ने सोचा नहीं होगा ये भूल है, वो तो समझी ये बेचारी गरीब घर की है, इसको मैं ले जाऊंगी अच्छी तरह से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, बच्चे की तरह रखूंगी पालना दूंगी और इसको पैसा भी दूंगी भले घर में भेजे। लेकिन एक भूल ये की कि वो घर से छुट्टी लेके के नहीं गई, बता के नहीं गई, और उसके कारण से इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस हो गई जो बाबा कहते ये बहुत बड़ा यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ गया। अब यज्ञ रक्षक आत्माएं क्या करती हैं? यज्ञ रक्षक आत्माएं किसी भी प्रकार की मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करती, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अंदर रह करके यज्ञ की रक्षा करती हैं। और सबसे बड़ी रक्षा ये है कि हमारे पवित्र वायुमंडल आभा मंडल से इसके अंदर कोई भी अशुद्ध वाइब्रेशन भी प्रवेश न करे। जो आत्मा यहां निवास करती है या आती है उनके अंदर इतनी वृत्तियों में प्योरिटी हो, इतने संस्कारों में शुद्धता हो, इतने विचार उसके उज्ज्वल हो, जो उसका जो आभा मंडल हो उसके आधार से भटकती हुई आत्माएं अथवा कोई भी प्रकार की आसुरी वृत्ति वाली यहां पर प्रवेश न कर सके। ये है यज्ञ रक्षक की पहली जवाबदारी। इसलिए बाबा कहता है जो यहां निवास करते हैं समर्पित रूप में रह रहे हैं या जो भी इस स्थान पर इस किले के अंदर आते हैं वैसी पवित्र और योगी आत्माएं आनी चाहिए। कोई भी प्रकार का मिसाल बाबा देता है इंद्रप्रस्थ के अंदर अगर कोई देहभिमानी व्यक्ति आ जाता है तो उस देहभिमानी की बदबू चारों तरफ फैलने लगती है। नहीं दिखाते हैं कि एक इंद्र परी थी उसकी किसी देहधारी से दिल लग गई और उससे उसको अपने इंद्रप्रस्थ में लेके चली गई तो वहां जो भी बैठी थी परियां इंद्र उनको बदबू आने लगी कोई देवमानी यहां बैठा हुआ है और देवमानी बैठा है तो उसको गुस्सा आ गया तो उसको धक्का दे दिया तो उसको नीचे फेंक दिया दोनों को ही और यहां आकर के अहिल्या बन गई। ऐसी ऐसी कहानियां शास्त्रों में लिखी गई हैं। बाबा भी कहता है कि ये इंद्रप्रस्थ है जहां पर इंद्र परियां पुखराज परी नीलम परी सब्ज परी कितनी परियां हैं ये सब परियां हैं जो पवित्र और योगी हैं जिनकी विचारधाराएं बहुत पॉजिटिव हैं बहुत शुद्ध हैं। अगर इस स्थान पर कोई भी अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाला देहमानी व्यक्ति आएगा तो उसके वाइब्रेशन इस स्थान के वायुमंडल में विघ्न है, यही यज्ञ के अंदर असुर हैं। इसलिए बाबा कहता है कि किसी भी देहमानी व्यक्ति को जब तक उसने बाबा को पहचाना नहीं परिवार को पहचाना नहीं तब तक यहां नहीं लाओ और विशेष करके बाबा की सभा में तो बिल्कुल नहीं लाओ क्योंकि बाबा के समय साकार के अंदर तो ये मुरलियां साकार के समय की चली हुई हैं। उस समय बाबा बच्चों को प्यार करके गोद में भी ले लेते थे और बाबा से जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था तो माताएं बहनें तो इतनी नशे में चढ़ जाती थी कि श्री कृष्ण सामने है तो ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देते तो क्या करती थी उसको गोद में उठा लेते थे। अब बाबा तो इतना बड़ा भारी और माताएं बहने ऐसे पकड़ के बाबा को उठा रही हैं, उठा लेती थी बाबा हल्का था और डांस करती थी बाबा के साथ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा तो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर संकल्प कैसे चलेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है संस्था के अंदर ये कौन सी लीला हो रही है यहाँ पर। एक बूढ़ा व्यक्ति है उसके साथ इतनी सब कुमारियां जवान जवान बहने नाच रही है तो बहुत उल्टा उल्टा अखबारों में लिख देगा। इसलिए बाबा कहता असुर को इस धरनी पर नहीं लाना। बाबा की जन्म चरित्र भूमि है कर्म भूमि है उसको तो पता ही नहीं है कि भगवान के साथ डांस हो रहा है देवी देवताओं के साथ नाच रहे हैं लोग। अब वो तो देहमान की दृष्टि से देख रहा है इसलिए ऐसे असुरों से यज्ञ की रक्षा करनी। वो रक्षक हैं जो कभी भी ऐसी आसुरी वृत्ति वाले न खुद हैं न कोई को यहां पर आने की अलाउ करते इसलिए छुट्टी नहीं देता बाबा। कोर्स करे पहले पक्का है कम से कम एक साल नियमों का पालन करे मर्यादाओं पर चले फिर उसको यहां छुट्टी दो। कारण तो ये है ना इसलिए बाबा यहां नहीं आने देता। तो यज्ञ के रक्षक बन करके फिर यज्ञ स्नेही और सहयोगी क्योंकि इतना बाबा की यज्ञ से हमारा प्यार है तन तेरा मन तेरा धन तेरा जो कुछ बाबा आपने दिया है हमेशा एक लक्ष्य रखना है। वैसे हमको पता है आप लोगों के अंदर एक रहता है कि बाबा के यज्ञ में मेरा सब कुछ सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए और भगवान के कार्य में सफल हो, ये बहुत बड़ा भाग्य है हम सबका। क्योंकि बाबा कई बार कहता है मैं बहुत पक्का सर्राफ हूं, बहुत पक्का सौदागर हूं, मैं ऐसे वैसे का सफल नहीं करा सकता हूं। अब जब टू लेट की बाबा बात करता है तो कहता है ऐसा कोई बच्चा निकलेगा, कभी कभी कहता है साउथ साइड में है, एक बार कहा था बाबा ने साउथ साइड में मेरा कोई ऐसा बच्चा ढूंढो, एक ही निकलेगा जो कहेगा मैं सारे यज्ञ को संभाल लूंगा, जितनी भी कोई चीजें हैं खर्चा हो रहा है वो सब मैं संभाल लूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। मान लो अगर एक बच्चा ऐसा बाबा कोई को टच कर दे और निकल आए, अरबपति करबपति हो, और कहे मैं पूरे यज्ञ को संभाल लूंगा, तो गरीबों का क्या होगा, बाकी बनेगा, वो तो बेचारे ऐसे कैसे रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है सफल को जो भी है कणा दाना वो बाबा के यज्ञ में सफल हो जाए। और बाबा बड़ा अच्छा मिसाल देता है, मैं एक दो कहानियां इस पर सुनाता हूँ। आप कहानियां माना मेरे को पास बाहर की पढ़ी हुई कहानियां नहीं, प्रैक्टिकल की बात है। एक बार मैं एक जगह भट्टी कराने गया आंध्रा में ही, आपने शायद नाम सुना हो धर्मावरम, नहीं धर्मावरम नहीं, भीमावरम, भीमावरम के पास एक स्थान है जहां पर स्वामीनारायण का मंदिर है, सत्यनारायण स्वामी का मंदिर है, वो अन्नावरम, अन्नावरम अन्नावरम धर्मावरम याद है, अन्नावरम। तो अन्नावरम में मैं गया भट्टी कराने, वो कुछ ऊंचाई पर पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। और उस अन्नावरम मंदिर में 400 भाई बहने हम गए, वहां धर्मशाला है बहुत अच्छी, मिर्याल गुड्डा के इस साइड के सब भाई बहने हमारे साथ थे, शकुंतला बहन ने बुलाया था। तो उस मंदिर के जो फोटो था स्वामी सत्यनारायण स्वामी का, वो मूछ वाला था, बहुत सफेद मूछ, और सारी ड्रेस देवताई थी लेकिन चेहरा ब्रह्मा बाबा जैसा था। तो देखने से ही मुझे एक बहुत अच्छा भान आया कि ये ब्रह्मा बाबा का यादगार मंदिर है। तो मैंने कहा मैं इसको देखने चलूं। तो मैं मंदिर में गया, सुबह सुबह ले गए मुझे, कम भीड़ नहीं थी तो अंदर ले गए। तो नीचे मंदिर के करीब 20-25 नए नए युगल सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे, सत्यनारायण की कथा रोज चलती थी। मैंने तो कभी कथा वो सुनी नहीं है, लेकिन मैंने उस पुजारी से पूछा वहां जो हमको गाइड कर रहा था, मैंने कहा सत्यनारायण की कथा क्या होती है, तो लीलावती कथा कलावती की कहानी सुना करके कि ऐसे ऐसे जो सत्य बोलता है उसका ये हो जाता है, सत्य बोलता है तो उसका ये हो जाता है। तो मुझे आया कि सत्यनारायण स्वामी कौन, हमारा बाबा ही है, गुप्त रूप में बूढ़े ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेने के लिए आ गया एक व्यापारी की, और उसने पूछा इसमें क्या ले आए हो, वो तो बहुत कुछ कमा के ले आया था, सोना हीरे जवाहरात विदेश से। और उसे जब पूछ लिया क्या ले आए हो, तो उसने कह दिया, उसने समझा पता नहीं बूढ़ा कौन है, पहचाना नहीं उसने, उसने कह दिया इसमें तो लत्ता पत्ता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो बोला अच्छा तथास्तु, तथास्तु कहते ही उसके अंदर जितना जेवर जो भी भरा हुआ था सामान वो क्या हो गया, सब वही हो गया तथास्तु कहते ही। फिर पश्चाताप बेचारे को, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को कहते हैं, आप कभी भी इस दरबार के अंदर बाबा के आगे, सत्यनारायण स्वामी का दरबार है ये, कभी भी भूल से नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो अगर तथास्तु हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है, बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बाबा आपने तो दिया ही, आपका ही है, मेरा क्या है, आपके कार्य के लिए ही है। और अगर सच्चे दिल से बाबा के यज्ञ में कोई थोड़ा सा करता है ना, उसका बाबा रिटर्न उसी समय करता है। मैंने देखा है कभी भी आज तक उसके पास कोई कमी नहीं आती है। और बाबा को दिल का सौदा बहुत प्यारा है, ऊपर ऊपर से कोई पूछ के करता है, क्या करता है, पूछता है तुम कितना करते हो, तुम कितना करते हो, तुमने कितना किया। बाबा कहते सौदा का धंधा है क्या, तो भगवान के घर में आए हो ऐसा सौदा क्यों करते हो, जिसको जितना करना है करने दो, गुप्त करेगा तो उसका और भाग्य बन जाएगा। कई बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे आते हैं, एक एक दो दो रुपए से यज्ञ नहीं चलता इतना बड़ा। लेकिन बाबा के इतने गुप्त बच्चे आते हैं जो भंडारी के अंदर ऐसे डाल के जाते हैं, पता नहीं चलता किसने डाला इतना, ना नाम है उसमें, ना सेंटर का नाम है, ना पता, भंडारी में डाल के जाते। तो बाबा करण करावन हार है और जिनका भाग्य बनाना है उनका गुप्त बना रहा है, और जो बड़े सच्चे दिल से कुछ भी करते हैं बाबा के यज्ञ में, बाबा कहता है ये बीज बोने का समय है। बीज बोने के समय, मान लो कोई किसान खेती वाला, बीज बोने का समय है, बरसात हो गई है, अच्छी धरनी है, तैयार है, सब लोग अपना अपना बीज बो रहे हैं, और एक किसान बैठा सोच रहा है मेरे पास तो खाने के लिए ही नहीं है, थोड़ा सा अनाज है, अगर मैं इसको जमीन में डाल के आ जाऊंगा कहीं सूखा पड़ गया तो क्या होगा, चिड़ियाएं खा गई तो क्या होगा, मैं तो जाता हूं, छोड़ दो, मैं नहीं बोता हूं। मान लो अगर उसके बुद्धि में इस प्रकार के संकल्प चलने लगे कि नहीं बोऊंगा तो क्या है, जितना है उतना खा करके तो चलाऊंगा, तो क्या उसकी वृद्धि होगी? या जब बीज सबके कटेंगे, जब फसल कटेगी तो उसके आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे जो कुछ है, अगर वो किसान थोड़ा सा भी उसमें से जितना खा पी रहा है, पांच दाना, दस दाना, थोड़ा सा भी निकाल करके बीज डाल के आता तो उसका एक का कई गुना मिल जाता, क्योंकि बीज बोने का समय था। लेकिन उस समय उसने नेगेटिव सोचा, साधारण संकल्प थे, इसलिए उसकी सफल नहीं हुआ और उसको उसका रिटर्न नहीं मिला। बाबा भी हम सबको कहते हैं ये संगम युग का समय, बीज बोने का समय है, और 84 जन्मों के लिए आपका भाग्य बन रहा है, केवल एक जन्म की बात नहीं है, 21 जन्म की ही बात नहीं है। बाबा कई बार कह देते हैं बच्चे तुम 84 जन्म तक संपन्न रहोगे, अगर इस समय तुमने बाबा के यज्ञ में दिल से सहयोग दिया है, सहयोगी बन करके अपना समझ करके बाबा के कार्य में मदद की है, तो आप बन जाएगा बाबा आपको रिटर्न करने के लिए। अगर तन की शक्ति लगाई है तो तन सदा के लिए निरोगी हो जाएगा, कोई रोग शोक नहीं आएगा। हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है, बाबा के घर में हमने तन लगाया है, आज बाबा ने मुझे बड़ा अच्छा रखा है। अगर स्थूल में कोई कर्मणा सेवाएं की हैं तो हम कहते हैं बाबा हमारी कर्मेंद्रियों को आपने शीतल बना दिया है। मन से अगर हम बहुत अच्छे मन मना भव होकर के बाबा के कार्य में लगे हैं तो मन की शक्तियां इतनी अच्छी हैं जो मन सेकंड में एकाग्र हो जाता है, मनसा से सेवा की है। और अगर किसी ने धन लगाया है, भले हम लोगों ने धन नहीं लगाया लेकिन इकोनॉमिक जो की है यज्ञ की, आज सब कुछ बाबा ने भरपूर किया, कोई चीज की कमी नहीं रखी, ये यज्ञ में धन से सेवा हमारी हो गई। आप सभी जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं, जिस प्रकार से सहयोगी दे सकते हैं, तन की शक्तियां हैं लगा दो, ये निरोगी बन जाएगा निश्चित, भगवान के कार्य में लग गया निरोगी तो बनेगा ही। लेकिन जो बाबा कह रहा है योगी वो है जिसकी काया शीतल है, आपके हर अंग अंग शीतल और सुगंधित हो जाएंगे, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, विकार शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपने बाबा के कार्य में अपनी कर्म इंद्रियों को लगाया है। इन्हीं कर्म इंद्रियों से पाप हुए हैं और इन्हीं कर्म इंद्रियों को सेवा में लगा दिया तो वो कर्म इंद्रियां स्वतः पावन बन जाएंगी। अगर मन की शक्तियां हैं तो कुछ समय एकाग्र होकर के मनसा से सारे वायुमंडल को शक्ति दो, सकाश दो, वायुमंडल चार्ज हो जाएगा, जहां आत्माओं को दुख होगा, अशांति होगी, पुकारेंगे, वहां वो शक्तियां काम करेंगी, मनसा सेवा हो जाएगी। धन है बाबा के कार्य में लगे, इधर उधर न जाए। कई लोग दान की वृत्ति रखते हैं लेकिन बाबा कहता कलयुग के अंदर दान भी पाप के खाते में चला जाता है। कई बार सिखाता है कि रहम दिल बच्चे, बाबा भी बड़ा रहम दिल था, बाबा को किसी का भूखा प्यासा देख नहीं सकता था, लेकिन कहता था कि अगर इसको मैंने पैसा दे दिया और इसने जाके शराब पी लिया, इसने जाके सिनेमा देख लिया, इसने जाके कोई गलत काम कर लिया, तो उसका हिस्सा, जो उसने गलती की उसका हिस्सा देने वाले पर पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके पैसे को लगाना है, ऐसे नहीं दे दो। अगर कोई भूखा प्यासा आता है भोजन करा दो, उसको वस्त्रों की जरूरत है वस्त्र दे दो। लेकिन क्या होता है, हम लोग गांव की सेवाएं करते हैं ना, एक गांव बहुत गरीब हमको मिला, गुजरात का एक बहुत गरीब गांव था जहां पर सब मतलब बिल्कुल बेघर थे। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अनुसार उन्होंने हम लोगों को कहा आप एक बहुत अच्छी चैरिटेबल संस्था है आपकी, आप कुछ इनको देंगे, आप किसी से दिलवा सकते हैं? हमने कहा हाँ जरूर, कुछ ना कुछ मदद करेंगे स्थूल में। तो हम लोगों ने करीब 25 सिलाई मशीनें उस गांव में माताओं को दिलवाई। 25 सिलाई मशीन एक भाई से कहा कि उसने कहा हम दे सकते हैं, मदद की। जब दूसरे साल तीसरे साल सर्वे किया गया तो किसी एक के पास भी वो सिलाई मशीन नहीं थी। माताओं से पूछा गया क्या हुआ, तुमको तो इतनी अच्छी अच्छी मशीन दी गई कि आप अपना कुछ न कुछ सिलाई करके धंधा करें। बोला मेरा पति शराब पीता है और उसने शराब के नशे में आकर के इन सबको बेच दिया और पी कर गया सारा। हम लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा दान है, लेकिन कई बार हमारा वो दान गलत रास्ते में चला जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले उनको ज्ञान दो, उनको समझ दो, उनको चरित्र का वैल्यू का पता चले, अगर वो सुधरेंगे थोड़ा सा फिर उनको मदद करोगे तो आपका भी पुण्य बन जाएगा, नहीं तो पैसा निष्फल हो जाता है। इसलिए अगर किसी को कोई को देने का ही शौक है तो ऐसी जगह पर मदद करके सहयोगी बन करके दो, आपका भाग्य बनेगा। लेकिन ऐसे ही नहीं जिसको आया ये गरीब है ये ऐसा है इसको दे दिया उसको दे दिया और उसने जाके गलत कर लिया तो उसका हिस्सा हमारे ऊपर बोझ के रूप में चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने अविनाशी यज्ञ रचा है, रुद्र यज्ञ रचा है और सभी के पाई पाई के सहयोग से चल रहा है। पता है आपको कितना गेहूं आता है, पता है आपको गुड़ कितना आता होगा, चीनी कितनी आती होगी मालूम है, दूध कितना आता है रोज ट्रक जाता है पालनपुर डेयरी में, कई लाख का तो दूध आता मास में, इतने सारे तीनों जगह भंडारे चलते हैं, दही बनता है, छाछ बनती है, पाउडर भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी रोज ट्रक जाता है भर के आता है ऊपर वहां से डेयरी से। लेकिन बाबा के गुप्त बच्चे बहुत सहयोग देते, अगर किसी स्थान पर गेहूं हो रहा है जैसे पंजाब में जब गेहूं निकलता है तो एक एक बाबा का बच्चा सोचता है मैं मधुबन में कुछ तो भेजूं, अगर एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट आते हैं तो एक एक बोरा भी निकाल करके एक ट्रक बना देते हैं, ऐसे कितने ट्रक गेहूं पंजाब से आ जाता है फ्री। ऐसे चावल वारंगल साइड से इधर से कितने बाबा के घर में आते हैं जिनके लिए कोई हमको पैसा नहीं देना पड़ता, वहां के भाई बहने मिल करके तैयार करते हैं, चावल हमारे यहाँ होते हम चावल भेजेंगे, कभी कभी ट्रक का पैसा हम लोग दे देते हैं कि आप लोग ट्रक का पैसा नहीं खर्च करो। लेकिन अधिकतर जब अनाज जहां पर भी होता है जिस सेंटर्स के नजदीक में ऐसा हो रहा है और अपने बीके भाई बहने कर रहे हैं तो कुछ न कुछ बाबा के घर में सफल करते हैं। अभी योगी खेती का गुड़ जो तैयार होता ना कोल्हापुर में होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, योग करते हैं और ऑर्गेनिक चीजें डाल देते हैं, जो गुड़ तैयार होता है वो कहते हैं हम बेचेंगे क्यों, हमको क्या मिलेगा, मधुबन में भेजेंगे, भेज देते सब मिलकर। तो ऐसे बाबा के बच्चे गुप्त रीति से यज्ञ को चला रहे हैं और अपना बहुत गुप्त भाग्य बना रहे हैं, उसी समय रिटर्न मिल जाता है उनको, भगवान के घर में गया माना कितने ब्राह्मणों के अंदर पेट में जाएगा और उसकी कितनी दुआएं उनको मिलेंगी। तो ये रुद्र यज्ञ भगवान ने रचा है हम सबकी पाई पाई को सफल करने के। और जो कोई कमी कमजोरी संस्कार स्वभाव है स्वाहा, ये यज्ञ है, लगन की अग्नि को तेज करो और संकल्प में दृढ़ता ले आओ, बाबा ये सब तेरा, स्वाहा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जो चीज अग्नि के अंदर चली जाती वो चेंज हो जाती, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आग ठंडी है, ठंडी आग के अंदर आप कोई भी डालोगे तो उसका रूप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए तेज अग्नि बहुत ज्वाला रूप की याद बाबा कहता, ज्वाला रूप माना ऐसा नहीं कोई भयंकर चेहरा बना लो बिल्कुल वैसे बैठ जाओ, बहुत शीतल भी है, ज्वाला है लेकिन शीतल है क्योंकि बाबा की याद है, लगन की आग है, लगन माना प्यार की आग है और प्यार में तो एकदम आत्मा खो जाती है, तो ये याद ही ज्वाला है, ज्वाला जैसे निरंतर जलती रहती है ऐसे निरंतर बाबा 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 की अनहद अंदर ध्वनि है और बाबा के प्यार में आत्मा खोई हुई है। तो अभी हम सभी चलेंगे हैं, उड़ेंगे, उड़ सकते हैं ना सभी, उठने की दिल हो रही, अभी कोई हिलेगा नहीं ना, एक घंटा बैठ सकते हैं, कोई को बहुत जरूरी है तो दो मिनट जा करके आ जाओ, नहीं तो आप एक घंटा अभी ऐसी तपस्या करो जो आपकी ज्वाला चारों तरफ से ऐसे फैलने लगे। ठीक है, कहाँ बैठेंगे, आपको आसन है, बाबा के दिल तक पर बैठेंगे या अपने भ्रकुटी आसन पर पहले बैठो, ये आसन बहुत अच्छा है, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए सब खड़े हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा ऊपर हाथ करके एक्सरसाइज कर लो, पैर पंजों के ऊपर, पंजों के ऊपर आ जाओ ऐसे। हाँ बहुत अच्छा, ठीक, फ्रेश हो जाओ। थोड़ा ऐसे ऐसे गर्दन भी कर लो। चलो अभी हम सब उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, फ्रेश है ना सब। ये अच्छी तरह से आसन लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ। तपस्वी मूरत होके बैठना है, साधारण याद नहीं। बहुत किया योग लेकिन मैं और मेरा बाबा और कोई संकल्प प्रवेश न करे। संकल्प है, शून्य नहीं होते हम कभी भी, जड़ता नहीं है लेकिन स्थिरता है। शब्दों पर ध्यान देना, जड़ता नहीं है, स्थिरता है। स्थिरता माना शून्य नहीं है लेकिन एक अनुभव का संकल्प है, मैं और मेरा बाबा। मूल वतन की साइलेंस का अनुभव है, बहुत गहरी शांति, कोई भी हलचल नहीं, तन भी स्थिर है, मन भी शांत है, बुद्धि भी हल्की है और दिल की भावनाएं भी एक बाबा में लगी हुई है। इसको तपस्वी कहते हैं। तो आज हम सभी अभी बाबा के पास चलेंगे और बहुत शक्तिशाली याद, जिसमें आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर चमक रही है और बाबा के दोनों नैनों के बीच में भ्रकुटी में जाके बैठ जाती है, वही दिल है। दिल ये नहीं है, हम कभी कभी दिल जब कहते हैं तो ये याद आ जाता है, हार्ट, ये तो पंपिंग है। लेकिन आत्मा के अंदर जो दिल में भावनाएं हैं, वो भावनाएं ही दिल कहलाती है। तो आज हम सभी बाबा के दिल में, माना इस भ्रकुटी आसन पर बैठने का अभ्यास करें। पहले अपने आसन पर बैठो, फिर बाबा के पास जाके बाबा की भ्रकुटी के साथ बैठ जाओ। ऐसे अनुभव करो जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों के बीच में मैं आत्मा बिल्कुल लाइट माइट होकर के चमक रही हूँ, एकदम चमकता हुआ सितारा हूँ जिसकी प्योरिटी की लाइट बहुत सुंदर चारों तरफ से आभा मंडल में फैल रही है, सारे विश्व को सकाश दे रही है। तो ऐसी लाइट माइट संपन्न तपस्या हम सभी करेंगे। ओम शांति।
ज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से।